प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे थोड़ी सी बातें ट्रिब्यूनल्स के बारे में करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अफगानिस्तान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन सारे डेवलपमेंट को आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, और अब जो स्थितियाँ आ गई हैं लगभग लगभग आप यूं कह लीजिए कि सरकार बनने के करीब ही है। काफ़ी कुछ उसका गठन हो भी गया है, लेकिन जो आंतरिक द्वंद्व होते हैं वो अभी मौजूद हैं और उम्मीद है कि सरकार का गठन हो जाएगा। न्यूज़ में आपने सुना होगा कि सरकार के गठन के समय में जो तालिबान ने जो जिन राष्ट्रों को आमंत्रित किया है उसमें एक है टर्की, दूसरे हैं ईरान, तीसरे हैं पाकिस्तान, चौथे हैं रूस, चीन, ये सारे देश हैं। और मुझे लगता है कि जब मैंने इन देशों के नाम लिए हैं तो आपके मन में किसी तरह का कोई द्वंद्व नहीं रहा होगा कि तालिबानी सरकार ने क्यों इन्हें आमंत्रित किया है, यानी कि मान सकते हैं कि ये बकायदे तालिबान के पक्ष में है। दोस्तों, इस बीच में जो तीन स्थितियां हैं उन सबसे तालिबान की जो सरकार है निपटने की कोशिश कर रही है, और ये तीनों इनके लिए बहुत जरूरी है। पहला तो यह है कि ये विश्व के जो दूसरे राष्ट्र हैं उनसे मान्यता प्राप्त कर सके, इनकी कोशिशें चल रही हैं। दूसरा जो इनके सामने संकट है वह है इनकी जर्जर हो गई अर्थव्यवस्था। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और अगर विश्व से मान्यता नहीं मिली तो इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में या संभालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पूरी तरह से ये कोशिश में है कि विश्व से जल्दी इन्हें मान्यता मिल जाए। और तीसरी जो आशंका है जिससे तालिबान सरकार भयभीत है, और कुछ एक्सपर्ट इसे कह भी रहे हैं, भयभीत है तो नहीं कहना चाहिए, वह है गृह युद्ध की आशंका। क्योंकि तालिबान के बारे में हम जानते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण समूह है, उसने अभी अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया है, लेकिन इस तरह के और भी बहुत सारे वहां छोटे छोटे आतंकवादी गुट हैं और वो भी सत्ता में अपनी भागीदारी चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में चीजों को बहुत सरल और सहज तरीके से निपटा पाना आसान काम नहीं है। तो ये तीन चुनौतियां अभी अफगानिस्तान की सरकार के सामने हैं। कल मैंने आप सबसे पैरालंपिक के बारे में कुछ बातें की थी। दोस्तों, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कल मैं आप सबसे डिस्कस नहीं कर पाया था समय की कमी के कारण, वह है कि जब से इस पैरालंपिक की शुरुआत की गई तो उसके पीछे दो तीन उद्देश्य थे, और सच बात यह है कि उन उद्देश्यों को पाने में सफलता भी मिली है। पहला उद्देश्य यह था कि जो हमारे दिव्यांग हैं, विश्व के जो दिव्यांग हैं, उनके अंदर जो हीन भावना है, उन हीन भावनाओं को तभी हम निकाल सकते हैं जब हम उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल कर सकेंगे। देखिए, सहयोग देना, उनके प्रति दया दिखाना वो एक अलग बात है, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, उनकी जो क्षमता है उसका दोहन करना या उसे अवसर उपलब्ध कराना वो बिल्कुल अलग बात है। तो जो पैरालंपिक शुरू किए गए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था कि जो दिव्यांग जन हैं उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया जाए, साथ ही साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। और सच पूछिए तो पैरालंपिक की शुरुआत होने के बाद पूरी दुनिया में इस वर्ग के प्रति जो धारणाएं धीरे धीरे बनती चली गई, सकारात्मक धारणाएं बनती चली गई, और इन्हें जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने लगी वो हम सबके सामने है। आप देखिए कि अक्सर आप किसी जगह पर जाइए, सार्वजनिक जगह स्थानों पर, तो वहां आपको मिलेगा कि भाई जो मान लीजिए कि जो दिव्यांग जन है वो कैसे प्लेन में जाएंगे, कैसे ट्रेन में चढ़ेंगे, कैसे सीढ़ियां चढ़ेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, इस तरह की सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध कराई गई हैं, और लगातार इन्वेंशंस भी हो रहे हैं। ऐसे ही खेल में नहीं चले गए, इन्हें बकायदे ट्रेंड किया गया है, यानी कि ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई। तो यानी कि पूरी की पूरी दुनिया में अब जो दिव्यांग जन है उनके प्रति बहुत ही सकारात्मक दृष्टि बनी है। और देखिए, भारत ने तो बकायदे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तक में उनके लिए रिजर्वेशन रखा हुआ है, और जो सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं वो गजब का काम करके भी दिखा रहे हैं। और पैरालंपिक में खिलाड़ियों ने, हमारे ही खिलाड़ियों ने इस बार जो कमाल करके दिखाया वो आपके सामने है। तो दोस्तों, खासकर जो संवेदनशील वर्ग है वह आपके सिलेबस में है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस पर थोड़ी सी बातें और की जानी चाहिए। अखबारों में आज एक छोटा सा तथ्य मुझे पढ़ने को मिला, मुझे लगा कि साइंस से चूंकि जुड़ा हुआ है तो उसकी चर्चा कर लेनी चाहिए। हालांकि ये समाचार पहले आ चुका है, और वो समाचार ये है कि एक कंपनी है जायडस कैडिला नाम आपने सुना होगा, जायडस कैडिला, उसने अभी एक वैक्सीन डेवलप की है जायकोव डी। ये बेसिकली एक वैक्सीन है, मैंने कहा कि वैक्सीन डेवलप किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो इस्तेमाल की गई जिस तकनीकी का वह है डीएनए, तो इसे डीएनए वैक्सीन कहा जाता है। डीएनए के से अपरिचित है, डीएनए वैक्सीन कहा जाता है। इस तकनीक में किया क्या गया है? इस तकनीक में किया यह गया है कि शरीर का जो डीएनए होता है उसका इस्तेमाल करके और फिर उसमें इम्यून प्रोटीन विकसित किया गया, इम्यून प्रोटीन, और यह प्रोटीन बकायदे शरीर में जो संक्रमण यदि हो जाता है तो उसके फैलाव को रोकता है, और यहां तक कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित भी रखता है। एक तो सुरक्षित रखता है और अगर थोड़ा बहुत संक्रमण हो भी गया तो उसे फैलने से रोकता है। दुनिया में अभी इसकी बहुत जबरदस्त चर्चा हो रही है और कुछ वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि मतलब 1990 से डीएनए पर आधारित वैक्सीन की खोज चल रही है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली थी, अब यह सफलता मिली है। तो वैज्ञानिकों का बकायदे यह मानना है कि चूंकि अब यह टेक्निक आ चुकी है, एक वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, तो बहुत जल्दी हो सकता है कि हम ऐसी भी वैक्सीन डेवलप कर लें जो कैंसर का इलाज कर सके। कैंसर एक बहुत बड़ी बात है, आप जानते हैं कि जो कैंसर है वो कितनी डरावनी बीमारी है। तो थोड़ी सी जानकारी मुझे लगा कि आपको इसके बारे में मुझे देनी चाहिए। अखबारों में आज एक छोटी सी खबर और भी है और खासकर चंद्रयान को लेकर है। चंद्रयान दो को भेजे हुए 2 साल पूरे हो गए हैं तो इसरो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वर्कशॉप की है, उसमें उन्होंने बताया है, ज्यादा खबरें तो नहीं है अखबारों में, बताया है कि चंद्रयान वन ने हमारा पता लगाया था कि चंद्रमा पर पानी है, तो चंद्रयान दो ने बकायदे उसकी पुष्टि कर दी है कि हाँ चंद्रमा पर पानी है, पर्याप्त पानी है। बस ये थोड़ी सी सूचना मुझे आपको देनी थी। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है ट्रिब्यूनल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बात कही है और खासकर वही मेरे इस मुख्य विषय का आधार भी है, और उसने ये कहा है सरकार से और जो मुझे लगता है कि काफी तीखी टिप्पणी है कि जो सरकार है वो ट्रिब्यूनल्स की जो पोस्ट है, जो पद खाली हैं, उनको भर नहीं रही है और इस तरीके से वो ट्रिब्यूनल्स को प्रभावहीन बना रही है, यानी कि जो उनकी उपयोगिता है उसे नष्ट कर रही है, और मुझे लगता है कि ये काफी बड़ी टिप्पणी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार ने अभी जो ट्रिब्यूनल संशोधन जो एक एक्ट पारित किया है उस एक्ट का संबंध ये जो हमारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, उनकी न्यूनतम आयु क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं, इस पर हो सका तो हम लोग कभी बात करेंगे, तो उसे भी उसने सही नहीं माना है। उसने इस ये कह के सही नहीं माना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बकायदे सरकार ने यह किया है, और उन्होंने कहा है कि ठीक है कि जो विधायिका है उसके पास कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार हमारे संविधान ने विधायिका को ही दिया है, लेकिन यदि न्यायालय कोई आदेश देती है तो विधायिका को कानून बनाते समय न्यायालय के उस आदेश के फैसले को निष्प्रभावी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जो ट्रिब्यूनल्स हैं मुझे लगता है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो गया है, तो इसे आप थोड़ा सा डिटेल में जाकर के देख लें। ट्रिब्यूनल्स सामान्य तौर पर हिंदी में हम इसे अधिकरण करते हैं, न्यायालय तो नहीं है, न्यायालय जैसे ही हैं। न्यायालय और अधिकरण में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि देखिए न्यायालय में तो आप कोई भी केस ले जाकर के दायर कर सकते हैं ना, क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, और दूसरे केस भी दायर किए जाते हैं और न्यायालय उनकी सुनवाई करता है, उन पर निर्णय देता है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो किसी विषय विशेष के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सरकारी का अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपकी आपके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं, केंद्र के भी हैं और राज्य के भी हैं, पर्यावरण के मामले में अलग से ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं, टैक्सेस के मामले में अलग से ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं, तो इस तरह से अलग अलग विषयों के मामलों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, ताकि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उनका निपटारा हो सके, क्योंकि ये विषय कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी जानकारी की मांग करते हैं, और जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे जो कोर्ट हैं उनके ऊपर कितना ज्यादा केसेस का दबाव है। बहुत ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब ये जो ट्रिब्यूनल्स का टॉपिक है इसे अच्छे से तैयार करें, और वैसे भी आपको इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं धीरेन्द्र जगदीश शर्मा, हेत शाह, मयंक द्विवेदी, यामिनी परमार, योगिनी पंड्या उदयपुर राजस्थान से, विजय शेरावत जयपुर राजस्थान से, और अभिषेक वर्मा अनूपपुर मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।